हरि 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ॐ। नारायण 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 नारायण। केन उपनिषद में प्रसंग तो यही चल रहा है कि सृष्टि में और इस एक शरीर में इच्छा करने वाला कौन है और इच्छा को पूरा करने वाला कौन है, क्या दो हैं या एक ही है, वही इच्छा करता है और वही पूरा करता है। अनुभव में तो ये आता है कि इच्छा के अनुसार कार्य पूरा नहीं होता, इसलिए ऐसा लगता है कि इच्छा करने वाला कोई अलग है और क्रिया कराने वाला कोई दूसरा है। इसलिए शिष्य ने गुरु जी से ये प्रश्न किया। उधर इंद्र ने हेमवती से ये प्रश्न किया था, तो दोनों जगह एक ही उत्तर है कि एक ही है, वही इच्छा करता है। शरीर में रहने के कारण उसको जीव बोलते हैं और समष्टि में रहने के कारण उसी को ईश्वर बोलते हैं, और वही क्योंकि संकल्प सिद्ध है उसका, कल्प वृक्ष के समान उसका संकल्प होते ही वो पूरा हो जाता है, अलग से उसे कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जैसा वो इच्छा करता है वैसा हो जाता है। तो फिर ये व्यष्टि जीवन में जो फर्क आता है कि इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता, ये क्यों होता है, बोले ये इसलिए होता है कि जो इच्छा करने वाला है वो अज्ञान के कारण अपने को इस शरीर भर में ही उसने सीमित कर लिया है। अगर वो इस शरीर की सीमाओं से अपने को अलग कर ले, जो कि संभव भी है और संभव नहीं भी है, नहीं तो इसलिए है कि मनुष्य में ये जिज्ञासा ही जागृत नहीं होती कि मैं कौन हूं, और संभव इसलिए है कि यदि ये जिज्ञासा जागृत हो गई तो अंत में जिस दिन भी उसको इसका उत्तर मिलेगा वो यही उत्तर मिलेगा कि मैं तो वही वस्तु हूं जो सृष्टि में, जिसको ईश्वर बोलते हैं। उस दिन उसे अलग से कोई इच्छा करके अलग से व्यापार करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मुंडक उपनिषद में बिल्कुल स्पष्ट बात कही गई है कि जिसको संसार का वैभव चाहिए वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सेवा करे, अर्चयेत भूति कामः, जो भूति का काम ऐश्वर्य को जो चाहता हो वो उसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं है। अगर सेवा से प्रसन्न हो गया, प्रसन्नता का मतलब ऑर्डिनरी सेंस में प्रसन्न नहीं है, उठ गई उसके मन में कि अच्छा भाई ऐसा ही सही चल, तो वो फिर जरूर काम पूरा हो जाता है नारायण। और फिर उसी के अगले मंत्र में कहते हैं कि यदि कोई भूति कामना न हो और परमेश्वर कोई चाहता हो, आत्मज्ञान ही चाहता हो, तो उसको भी ब्रह्मनिष्ठ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसका संबंध भी संकल्प से ही है। किताब में पढ़ करके ज्ञान नहीं होता है नारायण, किताब में पढ़ करके तो तैयारी तो होती है, चाहे जितनी किताबें रट लो, हम प्रवचन तो अच्छा कर सकते हैं लेकिन धारणा नहीं बन सकती। धारणा तो हमारी यही है कि मैं शरीर हूं, अब किताब पढ़ के या सुन के हम कहते हैं नहीं नहीं मैं शरीर नहीं हूं मैं, अरे दो दो बातें चल रही हैं ना, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, नहीं भी हूं और हूं भी, तो धारणा कैसे बनेगी ना, या तो मैं शरीर हूं या मैं शरीर नहीं हूं, अगर नहीं हूं तो इसे दोहराने की क्या जरूरत है कि मैं शरीर नहीं हूं, और अगर मैं आत्मा हूं तो भी इसको दोहराने की जरूरत नहीं है ना। तो धारणा चूंकि नहीं बन पाती है, उसका कारण यही है कि हमने किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की सेवा नहीं की है। उसके रंग में रंग गए होते तो हमारी धारणा यही हो जाती जो उसकी धारणा है। तो ये बात हुई कि एक ही तत्व है, तो फिर शिष्य ने पूछा कि उसको कैसे प्राप्त करें, तो गुरुजी ने कहा कि वो इंद्रियों से तो जाना नहीं जा सकता, न तत्व चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति, क्योंकि वो आंख की आंख है, कान का कान है, वाणी की वाणी है, प्राण का प्राण है। तो जो जिसका आत्मा होता है, आत्मा माने तत्व, घड़े का तत्व क्या है, मिट्टी, कुमार नहीं है, घड़े का तत्व मिट्टी है। अब घड़ा ये कहे कि मैं मिट्टी को जान लूं, अरे तो मिट्टी तो है ही, अपने को घड़ा जानना बंद कर दे मिट्टी है, लेकिन वो घड़ा तो जानना बंद करता नहीं है, मैं मिट्टी को जान जाऊं, मैं मिट्टी को जान जाऊं। तो इंद्रियां जो हैं ये अपने मूल को जान नहीं सकती, अपने से बाहर की वस्तुओं को जानने के लिए ही इनको बनाया गया है, तो उनको तो जानती हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको सब जानती हैं, और बिना परिश्रम के ही जानती है नारायण। वो परिश्रम तो होता है लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता। परिश्रम ना हो तो रात को नींद नहीं आएगी। ये भगवान ने नींद भी जो भेजी है उसका एक हेतु यही है कि सारे दिन भर इंद्रियों से जो हम व्यवहार करते हैं तो ये थक जाता है। इंद्रियां थकती हैं माने माइंड थकता है और उस थकान की वजह से फिर नींद आ जाती है। नींद आ जाती है तो फिर फ्रेश हो जाते हैं सुबह को, फिर दोबारा काम करते हैं। अगर फ्रेश हो करके हम अपने स्वरूप का चिंतन करें ना रहे, इसीलिए कहते हैं ना सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उस समय सारी एनर्जीज फ्रेश रहती है ना। तो कब करते हैं कि 10 बजे तो उठेंगे, 12 बजे तक जो है निपटेंगे। बोले अब चलो भगवान को बहका लेते हैं नारायण, तो वो तो फिर थक जाते हैं 12 बजे तक। थके हुए दिमाग से फिर क्या करोगे। तो न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति, इनका जो आत्मा है वो तुम हो, तो इनको भीतर तो लौटा नहीं सकते, ये तो बाहर की ओर ही देखती हैं। तो कहा कि अच्छा तो फिर और क्या तरीका है। तरीका यही है कि गुरुजी जैसे आपको आपके गुरु ने बताया हो ऐसे ही हमको भी बता दीजिए। तो जब उनको ये निश्चय हो गया कि अब ये मेरे से ही तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उन्होंने कहा अच्छा सुनो, हमारे गुरुओं ने ये बताया था कि ये आत्मा जो है ये विदित से भी परे है और अविदित से भी परे है, ज्ञात क्षेत्र से भी परे है और अज्ञात क्षेत्र से भी परे है। ऐसी कौन सी चीज है जो ज्ञात भी नहीं है और अज्ञात भी नहीं है। ज्ञात है तो या तो वो हे होगी, त्याज्य होगी, या उपादेय होगी, और अज्ञात है तो वो ना हे होगी ना उपादेय होगी। उसके बारे में जैसा आपका ज्ञान है बस वैसा ही है, लेकिन वो है भी कि नहीं है। तो इसलिए अगर आइए आत्मा अज्ञात है तो इसकी भी कोई कदर नहीं है, और ज्ञात है तो इसके त्याग की भी इच्छा हो सकती है। आत्महत्या कर ही लेते हैं लोग। तो हे उपादेय रहित, जिसको न छोड़ा जा सकता है न पाने की कोई इच्छा हो सकती है, ऐसा तो आप ही हो, स्वरूप ही है, आत्मा ही है, ये बताया उन्होंने। तो शिष्य ने कहा कि महाराज हमने तो शास्त्रों में सुना है कि आत्मा उसको कहते हैं जो ईश्वर की उपासना करता है, और ब्रह्म उसको कहते हैं जिसकी उपासना की जाती है। अब आप ये कह रहे हो कि तुम ही ब्रह्म हो, तो तुम ही ब्रह्म हो तो हम ही उपासक हो गए, हम ही उपास्य हो गए। तो ये तो अब तक के शास्त्र को सुने हुए के बिल्कुल विपरीत बात है। तो बोले हाँ विपरीत तो है लेकिन बात यही सच्ची है। आदमी जो सुनता है वो सत्य ही हो ऐसा तो नहीं है। तो कल इसके संबंध में 5 श्लोकों में से पहला श्लोक किया था कि यद वाचा नभ्युदितम ये न वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वाणी से जिसका ज्ञान नहीं किया जा सकता, वाणी के द्वारा शब्दों से जिसका ज्ञान नहीं किया जा सकता, बल्कि शब्दों के मूल में बैठकर, वाणी के मूल में बैठकर जो शब्दों को उत्पन्न करता है और उससे ज्ञान पैदा करता है, उसको ही तुम ब्रह्म जानो, वही हो तुम। नेदम यदिदम उपासते, इसमें एक बात कल बताने से रह गई थी, तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, उसको ही तुम ब्रह्म जानो, ये तो ठीक हो गया, एव लगा दिया, माने इसके अतिरिक्त दूसरी जगह ब्रह्म की तलाश मत करो, एव यही है। अब गुरुजी अगर ये जोड़ डाल के कहें कि यही है और शिष्य तैयार हो इसके लिए, तो उसी समय ज्ञान हो जाएगा नारायण, और तैयार नहीं है तो भीतर ही भीतर कैंची चालू हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? चलो गुरुजी कह रहे हैं तो मान लो, फिर पूछ लेंगे कैसे है। यही है तदेव त्वम विद्धि, यही हो तुम, और विद्धि है वो, बस जानना ही पर्याप्त है। अब जानने के भी कई तरीके के होते हैं, एक तो इंद्रियों से जानना होता है, एक मन से जानना होता है, एक बुद्धि से जानना होता है, एक साक्षी से जानना होता है। तो ये ब्रह्मदेव जी जो हैं, ये किसके द्वारा जानने योग्य है? नारायण, तो इंद्रियों के द्वारा तो जाना नहीं जा सकता, ये तो पहले बता दिया। अच्छा, मन के द्वारा जाना जा सकता है? तो बोले नहीं, मन जो है वो तो इंद्रियों की सूचनाओं के आधार पर ही मन चिंतन करता है, स्वतंत्र चिंतन मन नहीं कर सकता, कल्पना तो कर सकता है, मगर वो जो कल्पित वस्तु होगी वो अपने से भिन्न की ही कल्पना करेगा, और उसका आधार शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो इंद्रियों से ज्ञात होते हैं वही होंगे। इसलिए जितना सगुण और साकार संबंधी पुराणों में वर्णन मिलता है या उपनिषदों में भी मिलता है, वो सब मन की उड़ान को शांत करने के लिए है। एक दफे आप शास्त्र के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को एक ऑब्जेक्ट में स्वीकार करके और उसमें दिव्यता स्थापित करके अपना मन उसमें लगा दो, तो विषयों के प्रति जो तुम्हारी ललक है वो सब समाप्त हो जाएगी। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है और विषयों से उसकी आसक्ति नहीं कटती, तो यही समझना चाहिए कि वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, क्योंकि भक्ति जो है वो विषयासक्ति को रहने नहीं देती है ना। सब महात्माओं का यही अनुभव है और यही शास्त्र का भी नियम है। अब इसमें एक बात है कि जो ब्रह्म है वो शब्द तो सब ब्रह्म इस्तेमाल करते हैं, शंकराचार्य भी ब्रह्म इस्तेमाल करते हैं, रामानुज वल्लभ सब जितने संप्रदाय हैं सब ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं। अल्टीमेट रियलिटी जो है उसका वाचक है ब्रह्म, लेकिन उसका अर्थ सबका अपना अलग अलग है। शंकराचार्य जिसको ब्रह्म कहते हैं वो तो एक मेवा द्वितीयम सच्चिदानंद घन, उसको ब्रह्म कहते हैं। रामानुज जिसको ब्रह्म कहते हैं वो विशिष्ट है, उसमें जीव और जगत जो है उसके विशेषण कभी उनसे अलग नहीं होते हैं, माने सोपाधिक ही रहते हैं। वल्लभाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, ये सब जितने भी वैष्णवाचार्य हैं ये सब कहीं ना कहीं विशिष्ट को ही मानते हैं, उपाधि विशिष्ट ब्रह्म चैतन्य को ब्रह्म मानते हैं, उपाधि से उपहित भी नहीं मानते। अब देखो ये थोड़ी टेक्निकल बात आ गई, एक तो होता है उपाधि से उपहित, और एक होता है उपाय विशेषण से विशिष्ट। इन दोनों में क्या अंतर है? तो जैसे मैंने ये चादर ओढ़ रखी है, इसका ये जो लाल रंग है ये ऊपर से ही डाला गया है ना, वैसे तो सफेद है, तो ये लाल रंग इसमें आ गया, अब मैं लाल रंग वाला हो गया नारायण। तो चाहे जब मैं इसको चादर को उतार के फेंक दूं तो क्या उस समय भी मैं लाल रंग वाला कहलाऊंगा? तो जिस समय उपाधि मेरे साथ है उस समय तो मैं वाला कहलाता हूं, और जिस समय वो उपाधि मेरे साथ नहीं है उस समय वाला नहीं कहलाता हूं। तो शंकराचार्य कहते हैं कि व्यवहार में चैतन्य उपाधि वाला होता है, ये जीव जो है ये अंतःकरण की उपाधि वाला है, अज्ञान में ये ठोस वाला है और ज्ञानावस्था में ये फ्लूइड वाला है नारायण। अब गृहस्थ थे, सन्यासी हो गए, अब वो क्या हुआ, घर वाला जो था वो क्या हो गया? तो वाला खत्म हो गया ना वो, तो इसका मतलब है कि वो कोई पक्की बात नहीं थी। शास्त्र के द्वारा जो कुछ भी पकड़ाया जाता है वो सब फ्लूइड स्टेट में ही होता है, क्योंकि ये सब फ्लीटिंग है, बदलते जाते हैं। तुम छोड़ो तो छोड़ो, नहीं तो वो ही छोड़ जाएंगे आपको। बचपन छूट गया, जवानी छूट गई, बुढ़ापा छूट रहा है नारायण, ये शरीर भी छूट जाएगा, तो ये सब आपकी उपाधियां हैं। लेकिन ये जितने जीववादी हैं ये कहते हैं कि ये उपाधियां नहीं है, ये विशेषण है। विशेषण उसको कहते हैं कि दूसरे से तो अलग कर दे, उपाधि भी यही काम करती है कि लाल कपड़े वाला है तो सफेद कपड़े वाले से तो अलग कर दिया उसने। लेकिन विशेषण उसको कहते हैं जो कभी अलग ना हो सके। बोले ये घोड़ा काला है, तो काला घोड़ा जब हम कहते हैं तो ये कालापन जो है ये घोड़े का विशेषण है कि उपाधि है क्या? कालापन जो है वो घोड़े से अलग नहीं हो सकता है, वो तो उसके साथ ही रहेगा। तो वो जितने जीववादी हैं वो सब ये मानते हैं कि ये अंतःकरण जो है ये चैतन्य का विशेषण है, ये कभी अलहदा नहीं हो सकता है ना। इसलिए जीव जीव ही रहता है, वो भले ही थोड़ी देर के लिए तदाकार वृत्ति से ईश्वर के साथ एक हो जाए। और शंकराचार्य कहते हैं कि ये तो उपाधि वाले हैं, तो उपाधि का तो त्याग हो सकता है। अज्ञान अवस्था में जो उपाधि है, ज्ञान अवस्था में उनका त्याग हो जाता है। कर्म के जगत में भी यही है, शास्त्र ने जो कर्म बताए हैं उनका त्याग भी बताया है। अब देखो आज की समस्या वैसे यही है, अब लोग ब्याह करते हैं किस लिए करते हैं? शास्त्र की आज्ञा से करते हैं कि अपने मन की आज्ञा से करते हैं? तो अपने मन की आज्ञा से करते हैं ना, इसलिए फिर छोड़ नहीं पाते उसे। और शास्त्र की आज्ञा से यदि करते तो बोले भाई अब तुम ब्याह के सारे काम निपटा चुके ना, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, ब्याह हो गई, पढ़ाई हो गई, लिखाई हो गई, सबके लिए मकान बनवा दिए, बैंक बैलेंस कर दिए, अब तुम्हें छोड़ने में क्या आपत्ति है? बोले नहीं है तो हमारे ही, हमने पैदा किए हैं नारायण। अगर ये होता कि हमने तो शास्त्र की आज्ञा से विवाह किया था, तो शास्त्र कहता है कि भाई जब सब ये काम से निवृत्त हो जाओ तो फिर अपने को टोटली परमात्मा में लगा दो। उसके लिए वानप्रस्थ आश्रम रख दिया, गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दो, वानप्रस्थ में चले जाओ। फिर वानप्रस्थ में चले गए तो उसका भी त्याग कर दो नारायण, जब वो परिपक्व हो जाए तो फिर संन्यास में चले जाओ। और बोले संन्यास परिपक्व हो जाए तो संन्यास का भी त्याग कर दें? तो कहते हैं हां, संन्यास की रिजिडिटी का त्याग किया जा सकता है। विद्वत संन्यास जो रखा गया है, एक होता है आश्रम संन्यास और एक होता है विद्वत संन्यास। तो आश्रम संन्यास में तो नियम कड़े होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है, और विद्वत संन्यास जो होता है उसमें जिसको पाना था वो पा लिया, तो इसलिए नियम जो है वो थोड़े हल्के हो जाते हैं, उस पर विधि निषेध लागू नहीं होता है। लेकिन आश्रम सन्यासी पे तो सब लागू होते हैं ना। अगर वो विधि निषेध का पालन नहीं करेगा तो उसको भी पाप पुण्य ऐसा ही लगेगा जैसे कि गृहस्थी को लगता है। तो तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ये विशेषण अगर आप मानोगे इस अंतःकरण को, इंद्रियों को, तो कभी आप इसको मतलब छोड़ने की सोच भी नहीं सकते, छूट भी नहीं सकता है। और अगर इसको आप उपाधि मानोगे तो ये तो प्रारब्ध जब तक है तब तक शरीर है, प्रारब्ध चुक जाएगा तो ये शरीर भी चुक जाएगा और ये सब अपने आप झड़ जाएगा नारायण, उसको झाड़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये बात जो है पहले जानबूझ करके, जितना जैसे आदमी गिर जाए कीचड़ में तो बोले बारिश हो जाएगी तो सब धुल जाएगा, अरे अब कब होगी बारिश इसका क्या ठिकाना है, तो पहले कीचड़ जो लग गई है उसको झाड़ पोंछ के अलग कर दो जितनी झड़ जा रहा है। यही शास्त्र के आश्रम व्यवस्था जो है यही है। बाकी तो जब बारिश होगी, ज्ञान वर्षा होगी, तब अपने आप सब झड़ जाएगा, शुद्ध स्वरूप है ही आप। तो नेदम यदि तुम उपासते, ये ब्रह्म जो है ये उपासना का विषय नहीं है, ये ज्ञान का विषय है। इसलिए अगर तुम ये कहते हो कि उपासना से हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, तो उपासना तो कर्म का ही अंग है। कर्म से जो वस्तु प्राप्त होती है वो अनित्य होती है, तो ब्रह्म को भी अनित्य होना पड़ेगा, आपकी प्राप्ति को भी अनित्य होना पड़ेगा, तो फिर मोक्ष की जरूरत ही क्या है। दुनिया की वस्तुएं ही जब आपको प्राप्त हैं तो इसी में मगन रहो ना। इतना परिश्रम किया छोड़ने छाड़ने का और फिर भी अनित्य वस्तु ही हाथ में लगी, तो कर्म का फल नहीं है। तो नेदम यदि तुम उपासते, इदम रूप से जिसको तुम उपास्य मानते हो, यह रूप से जिसको उपास्य मानते हो, वो ब्रह्म नहीं है, वो तो उपास्य है, वो ज्ञेय नहीं है। ब्रह्म जो है वो ज्ञेय है। महावाक्य और नेति नेति अवान्तर वाक्यों के द्वारा उसका बोध होता है, उसके लिए कोई कर्म नहीं होता है। तो ये एक बात, तो ये दूसरी बात ये कि इदम रूप से इसको नहीं प्राप्त कर सकते, तो अहम रूप से प्राप्त होता है क्या? अब इसमें जो आधुनिक वेदांती हैं वो कहते हैं कि हाँ, अहम रूप से इसकी प्राप्ति होती है। सोहम शिवोहम नारायण अहम ब्रह्मास्मि, इसको दोहराते रहिए तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो बोले जब ये ज्ञान हो जाएगा तो इदम बेचारे का क्या होगा? अहम तो ब्रह्म हो गया, इदम का क्या होगा? तो ऐसा नहीं है कि इदम रूप से तो उपास्य नहीं है, वो ये खंडन कर दिया। ये अहम और इदम दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं, सुषुप्ति में दोनों एक साथ लीन हो जाते हैं या एक एक करके लीन होते हैं। जब सुषुप्ति आएगी तो न अहम बचेगा और न इदम बचेगा। तो अगर अहम को ही आप परमात्मा मानोगे तो उसकी भी वही गति होगी जो इदम की होगी नारायण। तो इसीलिए कहते हैं कि अहम परमात्मा नहीं है, अहम का जो साक्षी है, अहम और इदम दोनों का जो साक्षी है, दोनों जिस अधिष्ठान में स्फुरित होते हैं, ये अंतःकरण स्फुरित होता है, इसलिए दोनों एक साथ उदय होते हैं और दोनों एक साथ लीन होते हैं। ये अंतःकरण के ही दो रूप हैं, अहम भी और इदम भी। अब सापेक्ष रूप से आप ऐसा कह सकते हो कि इदम की अपेक्षा अहम जो है वो परमानेंट सा ज्यादा लगता है, क्योंकि इदम में परिवर्तन होता रहता है और अहम में परिवर्तन धीरे धीरे मालूम पड़ता है। अरे हमारे बाल सफेद हो गए, बुढ़े हो गए हम, तो बताओ कब हुए बाल सफेद, कोई डेट है किसी के पास? तो वो तो कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल रहा था, एक दिन मालूम पड़ा कि सफेद हो गए, तो उस समय तो मालूम नहीं पड़ा आपको, तो वो धीरे धीरे टाइम गैप के साथ मालूम पड़ता है। और इदम में जो परिवर्तन होता है वो तुरंत मालूम पड़ जाता है। तो इदम अपेक्षाकृत अहम के अनित्य ज्यादा है और इदम की अपेक्षा अहम जो है वो नित्यता उसमें ज्यादा मालूम पड़ती है। इसलिए लोग कह देते हैं कि अहम में ही परमात्मा को ढूंढो, लेकिन नारायण परमात्मा को ढूंढो इतनी ही बात है, अहम परमात्मा नहीं है। तो क्या है ये अहम? ये अगर आपको आज नई बात सुनने को मिल रही हो तो इस पर विचार कर लेना। ज्यादातर तो यही सुनने को मिलता है कि ये अहम ही परमात्मा है, ये अहम ही परमात्मा, तुम ही परमात्मा हो। जब ऐसा बोलते हैं ना तो अहम को ही स्वीकृति होती है। तो अहम वृत्ति का जो विषय है वो परमात्मा नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इदम वृत्ति का जो विषय है वो भी ब्रह्म नहीं है, और अहम वृत्ति का जो विषय है वो भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि दोनों का उदय और अस्त एक साथ ही होता है, दोनों ही अंतःकरण के ही रूप हैं। तो फिर क्या है? बोले इस अहम की पूंछ पकड़ के चलो, इदम को तो छोड़ दो, यह से अहम में आ जाओ, क्योंकि अहम ज्यादा स्थायी मालूम पड़ता है, तो अहम में आ जाओ। अब अहम की पूंछ पकड़ के चलो, ये अहम कहां तक ले जा रहा है? वो कहते हैं कोई बरसाने गए, किसका जिक्र है सुनाया तो महाराजा श्री न था, पता नहीं किसके बारे में सुनाया था। तो बरसाने में पहले जंगल बहुत था, अब तो थोड़ा बहुत कम हो गया। बरसाना माने राधा रानी का जो स्थान माना जाता, तो वहां जंगल में वो भटक गए रास्ता, कैसे निकले कहां निकले। तो महात्मा ने जो है प्रार्थना की, तो जब आंख खोली तो एक मोर दिखाई दिया, और वो मोर उनकी तरफ देख के और फिर चलने लगा। तो महात्मा इतने आकर्षित हुए, वो बोले चलो शायद ये मोर हमको बुला रहा है, भावुक तो होते ही हैं भक्त लोग, तो उस मोर के पीछे पीछे वो चल दिए। अब वो मोर जंगल में होता हुआ गुजरता हुआ नारायण बाहर निकल गया, तो महात्मा जंगल से बाहर निकल गए और फिर देखा कि मोर तो वहां था नहीं, नारायण गायब हो गया। तो ये जो अहम है ये मोर समझ लो इसे आप, इसके पीछे पीछे चलो, ये कहां पहुंचाएगा नारायण? तो पहले आभास में पहुंचाएगा, अंतःकरण से आभास में पहुंचाएगा, आभास से फिर साक्षी में पहुंचाएगा, साक्षी से फिर ब्रह्मत्व में पहुंचाएगा, और फिर मोर गायब हो जाएगा नारायण, निकल गए जंगल से बाहर। तो नेदम यदि तुम उपासते, जब ये कहते हैं तो ये ही मत समझ लेना कि इदम रूप से जिसकी उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है, अहम रूप से भी यदि जिसकी उपासना करते हो वो भी ब्रह्म नहीं है, लेकिन अहम का अनुसंधान यदि उसका आश्रय लेकर के किया जाए तो वो ब्रह्म तक पहुंचा देता है। और इदम का अनुसंधान करोगे तो कहां जाओगे नारायण। अब फूल फूल के पीछे पीछे चलो, बोले धरती में जाएंगे, पौधे में जाएंगे, फिर पौधे से धरती में जाएंगे, फिर धरती से कहां जाओगे नारायण। तो कारणमय 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 होते होते फिर तत्पदार्थ में जाकर पहुंचेंगे, ईश्वर में पहुंचेंगे। लेकिन दर्शन वहां ईश्वर का नहीं होगा, ईश्वर तक पहुंचेंगे ये तो ठीक है, लेकिन वहां ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर जो है वो कोई इंद्रिय का विषय नहीं है, वो मन और बुद्धि का भी विषय नहीं है। वहां भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा, जिसकी भी पूंछ पकड़ोगे उसको पूंछ को छोड़ना पड़ेगा। अंत में जाकर के एक ही वस्तु शेष रह जाती है, वो चाहे उसे त्वम बोलो चाहे उसे तत् बोलो, दोनों आए हुए हैं एक ही श्लोक में, तत् एव ब्रह्म त्वम विद्धि। जानोगे तो क्या होगा कि जो तत् है सोई त्वम है, जो त्वम है सोई तत् है, यही जानने में आएगा। तो वेदांत की रीति यह है कि इदम से वैराग्य करो, अहम में आओ, और अहम का फिर अनुसंधान करो कि ये कहां से उदय हो रहा है। तो अंतःकरण में स्फुरण हो रहा है, अंतःकरण में क्यों हो रहा है, तो बोले इसमें जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है उसमें से ये अहम अहम की आवाज आ रही है। अब उस चैतन्य को पकड़ो नारायण। चैतन्य माने ज्ञान, ज्ञान तो साक्षी में आ गए। अब शायद आप मन मन में बोल रहे थे कि साक्षी के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होगा नारायण। साक्षी के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है, साक्षी तो बिल्कुल नपुंसक है, क्योंकि साक्षी से भिन्न अगर ब्रह्म हो तब तो ब्रह्म साक्षी भाष्य हो जाएगा, साक्षी भाष्य होने से वो भी अविद्या के कार्य में चला जाएगा, और अगर इंद्रियों का भाष्य हो तो वो आभास भाष्य हो जाएगा नारायण, वो अनित्य हो जाएगा। तो ब्रह्म न तो साक्षी भाष्य है और न आभास भाष्य है, ये टेक्निकल नाम है इनके। आभास के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से जो प्रकाशित होते हैं पदार्थ उनको आभास भाष्य कहते हैं। जैसे ये फूल है तो इसको हम आंख के द्वारा और अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है जिसको मैं इस समय मैं बोल रहा हूं उसके द्वारा ये फूल जाना जा रहा है, तो ये आभास भाष्य। अब साक्षी किसका भाष्य होगा? साक्षी भाष्य उसको कहते हैं कि बिना इंद्रिय के जिसको साक्षी प्रकाशित करता है। तो साक्षी तो अद्वितीय ब्रह्म है नारायण, उसमें अन्य रूप से यदि कोई प्रकाशित होती है तो अन्यता जो है वो अविद्या के कारण मालूम पड़ती है, इसलिए उसको साक्षी भाष्य को अविद्या का कार्य माना गया है। तो साक्षी तो नारायण स्वयं ब्रह्म है, इसलिए उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक से मैंने प्रश्न किया था, मैंने कहा अच्छा बताओ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही प्रश्न यहां दोहरा रहा हूं मैं। ब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सत्यम का तो ठीक है, जिसकी सत्ता हो एग्जिस्टेंस हो उसको सत्य बोलते हैं। ज्ञानम का भी ठीक है। अब इस अनंतता का कैसे साक्षात्कार करोगे? ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण माना जाता है, अनंतता का साक्षात्कार कैसे करोगे? दूसरे शब्दों में अपरिच्छिन्नता का साक्षात्कार कैसे करोगे? अनंत बोलो अपरिच्छिन्न बोलो, असीम बोलो एक ही अर्थ में है, तो कैसे साक्षात्कार करोगे? अगर अनंत साक्षात्कार का विषय हो जाएगा तो वो अनंत भी परिच्छिन्न ही हो जाएगा। आभास भाष्य होगा तो इंद्रियों के द्वारा भाष्य होगा तो परिच्छिन्न ही होगा, और अगर सिर्फ मालूम पड़ता है साक्षी के द्वारा अपरिच्छिन्न तो वह अविद्या का कार्य होगा ना। तो अनंत का साक्षात्कार नहीं होता है ना, सिर्फ परिच्छिन्नता की भ्रांति की निवृत्ति होती है। मैं परिच्छिन्न नहीं हूं, जहां यह स्वीकृति हुई परिच्छिन्न नहीं हूं तो फिर क्या हूं, उसी को अपरिच्छिन्न बोलते हैं। जिंदगी नारायण बीत जाती है कि हम तो शरीर भर में ही हैं, अपरिच्छिन्न तो है नहीं हम। अरे तो इसी को तो काटना है कि मैं शरीर भर में हूं, ऐसे थोड़े ही कि मैं शरीर में बैठ करके और अनंत का दर्शन कर लूंगा ना। एक कोने में बैठ करके यदि आप समष्टि देश का वर्णन अनुभव करना चाहें तो नहीं हो सकता, अपने दायरे से आपको निकलना पड़ेगा। अब कहते हैं अगले श्लोक में, यन्मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। यन्मनसा न मनुते, मन के द्वारा जिसका मनन नहीं किया जा सकता, या मन माने मन और बुद्धि दोनों, माने पूरा अंतःकरण का वाचक है यह मन। मन बुद्धि के द्वारा जिसका मनन ज्ञान नहीं हो सकता, ये न जिसके द्वारा मन का मनन किया जाता है, माने मन का मनन क्या है, मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं यही मन का मनन, उन संकल्प विकल्पों को जानना यही मन का मनन करना है। तो जिसके द्वारा मन का मनन किया जाता है उसको ही तुम ब्रह्म जानो, बाकी तो है ही नेदम यदि तुम उपासते। अच्छा ये मन क्या चीज है, कह तो दिया हमने कि अंतःकरण है, लेकिन अंतःकरण क्या चीज है, कारण है क्या, नाम तो इसका ऐसा ही है अंतःकरण, भीतर का यंत्र अंतःकरण। जैसे बाहर के यंत्र तो ये हैं पांच ज्ञानेन्द्रियां, ऐसे ही भीतर का यंत्र जो है वो अंतःकरण है। और एक अर्थ और महाराज श्री करते थे कि अंतः क्रियते अनेनो, बाहर की इंद्रियों के द्वारा जानी हुई चीजों को भीतर करके जो आत्मा को परोसता है वो है ये चमचा है आत्मा का नार। चमचा सब समझते हैं ना, चमचा चमचा माने खाने वाले को वस्तु उठा करके जो दे, तो भोक्ता तो ये जीव आत्मा है, तो इसको परोसता कौन है, तो बोले ये अंतःकरण परोसता है। क्या परोसता है, कि वो बाहर से जो इंद्रियां सामान भेज रही हैं भोग की, उनको आत्मा को परोसता है अंतःक्रियते। और एक यह है कि बाहर की चीजें छोड़ो, कल्पना की उड़ान भी यही मन करता है ना, आकाश पाताल की सब सोच लेता है। जितना भी साइंटिफिक इन्वेंशन डिस्कवरी होती है ये पहले सब की सब मन में ही आती है ना, बाहर तो फिर उसे क्रियान्वयन जब करते हैं तब वो लोगों के उपयोग की बात होती है। पहले तो मन में ही स्ट्राइक होता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। इल्हाम भी इसी को बोलते हैं नारायण, आकाशवाणी भी इसी को बोलते हैं। कहां से आती है वो सूचना मन में? तो ये जो कल्पना है, ये कल्पना कहां से निकलती है? इसका बीज कहां है? कल्पना भी बिना कार्य कारण के नहीं होती है। कोई साइंटिफिक इन्वेंशन बिना कार्य कारण का नहीं होता है। ऐसे हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, तो ऐसा यदि हो जाए तो आगे ऐसा हो सकता है, ऐसे ही तो इन्वेंशन होगा और कैसे होगा। अब इतना ये चित्त में संस्कार भरे हुए हैं नारायण, कितने जन्मों के भरे हुए हैं? एक जन्म के इतने संस्कार होते हैं तो अनंत जन्मों के संस्कार इस ब्लैक बॉक्स में भरे हुए हैं चित्त में। उनके द्वारा ये मन में स्फुरण, अंतःकरण में स्फुरण होते हैं, वो धीरे 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 धीरे, कभी कोई निकल जाता है, कभी कोई निकल जाता है, कभी कोई निकल जाता है। अब जिनका डायरेक्ट भोग से संबंध है उसको प्रारब्ध बोलते हैं, और जिसका डायरेक्ट भोग से संबंध नहीं है उसी को कल्पना बोलते हैं नारायण। तो एक तो मन का काम है कल्पना करना, एक मन का काम है इंद्रियों के साथ मिलकर के और विषयों का ज्ञान कराना। बोले जरा फिर बताइए। बोले अभी तो बताया कि नहीं, जरा मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला गया। तो कान ने तो सुना लेकिन चूंकि मन वहां नहीं था तो इसलिए कान का ज्ञान जो है वो मन तक पहुंचा नहीं, तो अंतःक्रियते नहीं हुआ, आत्मा तक पहुंचा ही नहीं वो ज्ञान। तो बाहर इंद्रियां जो हैं अपने अपने विषय में असाधारण करण है। अब ये पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कर लेता हूं, जैसे रूप के विषय में नेत्र जो है वो असाधारण करण है। कान हो और आंख न हो तो रूप नहीं देख सकता, उसके रूप के विषय में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करण जो है वो आंख है। आंख होगी तब तो दिखाई देगा रूप, नहीं होगी तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन आंख भी हो और मन उसके साथ में न हो तो भी रूप नहीं दिखाई देगा। अरे वो चाबी कहां रख दी? चाबी 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 कहां है? चाबी कहां है? ये तो प्रायः रोजाना होता है नारायण। फिर कोई कह देता है रखी तो है सामने, अरे भाई दिखा ही नहीं मुझे, तो आंख तो खुली हुई थी, दिखा क्यों नहीं? बोले आंख तो खुली हुई थी, मन कहीं और था। ये मूल श्रुति में ही लिखा हुआ है कि मेरा मन कहीं दूसरी जगह था, मैंने सुना नहीं, मेरा मन दूसरी जगह था, मैंने देखा नहीं। तो नारायण जब मन और इंद्रियां एक दिशा में हो जाती हैं तब वस्तु का ज्ञान होता है। एक तो ये होता है और एक कल्पना, दो और तीसरी स्मृति, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति, योग दर्शन की परिभाषा है। जो आपने पहले अनुभव किया है वो जाकर के सुरक्षित हो जाए। आजकल जिसको कंप्यूटर में मेमोरी स्टोर कहते हैं ना, मेमोरी में स्टोर हो गया है। अच्छा तो हो गया, अब कैसे निकले उसमें से? तो बोले ये बटन दबाओ तो निकल आएगी। तो ऐसे ही जो कुछ भी हम करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, भोगते हैं, उन सब का अनुभव जो है वो स्टोर हो जाता है मेमोरी में, उसी को मन बोलते हैं। विषय अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति, अनुभूत विषय का सुरक्षित रहना, इसी को स्मृति बोलते हैं। समय पर निकाल के दे देती है। अगर किसी की स्मृति नष्ट हो जाए, हो जाती है रोग से, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, क्या हाल होगा उसका? अरे मैं कौन हूं यही नहीं मालूम है सर। ये देखो, माफ करना, ये भक्ति का जो आवेश होता है ना, उसमें भी ये स्थिति हो जाती है। सुतीक्षण का वर्णन आता है ना, बोले उन्हें राम जी का उस समय इतना आवेश हो गया कि राम जी आ रहे हैं, इतना आवेश हो गया कि उन्हें सूझता ही नहीं था कि कौन सी किधर ही, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर ना सड़क, ना सड़क दिखे, ना दिशा दिखे, ना कोई व्यक्ति दिखे, सूझता नहीं है। वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। आवेश किसी का भी हो वो खराब है। ज्ञान का भी आवेश होता है, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये हमारे स्वामी रामतीर्थ जो थे ना, ये ज्ञान के आवेश में रहते थे, और उस आवेश का परिणाम ये हुआ कि गंगा जी में नहाने को गए, वही भूल गए कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं यहां पर, बह गए उसी में। चैतन्य महाप्रभु थे, ये भी आवेश में रहते थे, समुद्र में कूद गए, वो तो समुद्र चूंकि एक दफे तो फेंक ही देता है बाहर को, तो इसलिए बच गए वो, रामतीर्थ नहीं बचे। आवेश जो है ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो तीन काम मन के हैं, स्मृति और विषय का ज्ञान और कल्पना। तो जो मनुष्य पूर्ण होगा उसमें ये तीनों बातें ढंग से होंगी। कायदे से होती हैं तो उसी को महापुरुष बोलते हैं, और बेकायदे होती हैं तो वो उसको कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। लेकिन ये सब मन ही है। ये बृहदारण्यक की श्रुति भाष्यकार ने कोट की है, श्रुति जरा लंबी है। काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति हृ धी भी इत्येतत् सर्वं मन एव। फ्राइड बेचारा क्या करेगा इस श्रुति के सामने। ये बिग बैंग थ्योरी जो आजकल बड़ी प्रसिद्ध चल रही है ना, ये छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य जी ने इसको लिखा है कि सृष्टि कैसे हुई। आदित्य से सृष्टि हुई और उसमें एक बहुत जोर का धमाका हुआ। अब उस समय तो कोई ये यंत्र नहीं थे जो आजकल के साइंटिस्ट बनाते हैं। तो कहते हैं ये श्रद्धा अश्रद्धा, काम संकल्प संशय, धैर्य अधैर्य, लज्जा सारी बुद्धियां, एतत् सर्वं मन एव। ये सब मन ही है। पूरा अंतःकरण जो है, इसमें जो कुछ भी स्फुरित हो रहा है, ये मन है। ये आत्मा नहीं है, ये मन है। आत्मा में ये फुदक रहा है। आप कौन हो? मन के आत्मा। तो ऐसा अनुभव करो कि ये मन जो है मेरे में फुदकता है। सुषुप्ति में नहीं फुदकता, जागृत और स्वप्न में फुदक रहा है। तो मन बड़ा कि हम बड़े? अरे फुदकने वाली चीज तो शांत हो जाती है और जिसमें फुदक रहा है वो बनी रहती है। तो आत्मा ही महान है, इसलिए मन जो है वो आत्मा को नहीं जान सकता है। वो तो मन का मन है, मन का अधिष्ठान जो है वो आत्मा है। मन का विषय ये काम संकल्प धृति अधृति श्रद्धा वृद्धा ये सब जो है ये नहीं है, ये आत्मा नहीं है। अच्छा, इसमें दार्शनिक थोड़ा मतभेद है। आजकल तो ऐसा मानते हैं कि ये मन जो है वो मटेरियल है, भौतिक है। क्या अब एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन भौतिक है इसी से समझ लीजिए आप। जिन पदार्थों से ये शरीर बना हुआ है उन्हीं पदार्थों की सूक्ष्म अवस्था से मन भी बना हुआ है, और मन को वो कंप्यूटर का एक हिस्सा ही मानते हैं। कंप्यूटर को मन से अलग, वो कंप्यूटर से अलग मन नाम की कोई चीज नहीं मानते। लेकिन अपने यहां जो है वो मन को भौतिक नहीं मानते। मन सूक्ष्म तन्मात्राओं से बना हुआ है। भौतिक माने तो होता है पंचभूत जब मिल गए उसके बाद जो चीजें बनती हैं वो तो भौतिक कहलाती है, और उससे जो पहली अवस्था है अहंकार, सांख्य के शब्दावली में अहंकार तन्मात्रा की जो अवस्था है वो नारायण, वहां मन की स्थिति है। भूमि रापो नलो वायु खंग, ये तो पंचभूत हो गए। मनो, वहां मन शब्द दिया है भगवान ने, मनो बुद्धि रेवच, तो वहां मन का अर्थ भाष्यकार ने किया कि मन माने अहंकार, अर्थात वो इस सांख्यवादियों का जो अहंकार है, सूक्ष्म तन्मात्राओं का जो कारण है अहंकार, उसका वाचक यहां मन है। और बुद्धि माने उस अहंकार का कारण जो बुद्धि महत्तत्व है वो बुद्धि का अर्थ है। और अहंकार इति यम्मे, और वहां जो अहंकार शब्द है वो किसका वाचक है, बोले प्रकृति का वाचक है। तो शब्द तो कुछ है नारायण, और उनके अर्थ जो है वो तो आचार्य लोगों का काम है बताना। तो ये जो मन है ये भौतिक वस्तु नहीं है, पंचभूतों के बने, ये स्थूल शरीर तो पंचभूतों से बना हुआ है, और जो सूक्ष्म शरीर है ये सूक्ष्म तन्मात्राओं से बना हुआ है, सूक्ष्म भूत भी बोलते हैं उनको, सूक्ष्म भूतों से बना हुआ है, उसी से ये मन बना हुआ है। और सारे संसार में एक ही मन है, आपका मन अलग है मेरा मन अलग है ऐसा नहीं है। वो तो ऐसा है कि जैसे समुद्र में से एक बाल्टी पानी आप ले आए और एक बाल्टी पानी मैं ले आया, अब कहते हैं ये मेरा समुद्र का जल है, आप कहते हो ये मेरा समुद्र का जल है। अगर एक ना हो नारायण तो न तो ये शक्तिपात हो सके और न ये एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाता है, ये भी नहीं हो सकता है। मन एक ही है, ईश्वर संकल्प करता है तो सब जीवों के पास वो संकल्प पहुंच जाता है। अगर मन अलग अलग हो तो बेचारा ईश्वर तो संकल्प करते करते ही परेशान हो जाएगा, इसके लिए अलग करो, इसके लिए अलग करो, इसके लिए अलग करो। अब उसने तो एक दफा संकल्प कर दिया, बहु श्याम प्रजाए हो, मैं बहुत रूपों में उत्पन्न हो जाऊं, अब सब जीवों में पहुंच गया ये, अब सब जीव संतान उत्पन्न करने में लगे हुए। ये बहु श्याम प्रजाए जो ईश्वर का संकल्प है, यही तो संकल्प सब जगह काम कर रहा है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, अपनी अपनी वंश परंपरा को आगे चलाते रहते हैं। अरे औरों तो और महात्माओं का भी यही हाल है, वो भी तो चेला इसीलिए बनाते हैं। हमारे एक महात्मा थे, आश्रम में रहते थे, तो जरा थोड़े मजाक किया थे, तो वो कथा चूंकि भक्तमाल की सुनाते थे तो उनका नाम भक्तमाली पड़ गया। नाम तो कुछ और था उनका, सर्वेश नाम था, लेकिन भक्तमाल की कथा सुनाते थे तो सब लोग भक्तमाली बोलते थे। बड़े फक्कड़ और विद्वान थे, वैसे व्याकरण और न्याय शास्त्र इसके तो दो विषय के तो वो आचार्य थे ही थे, काशी से पढ़ के आए थे नारायण, लेकिन थे फक्कड़ टाइप के वो। तो उनसे पूछा, भक्तमाली जी कुछ चेला वेला बना लो, कम से कम मर जाओगे तो कोई फूंक तो आएगा, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहोगे। तो बोले पड़े रहेंगे तो पड़े रहेंगे, जब बास मारेगी तो अपने आप को उठा के फेंक के आएगा, चेला बनाने की क्या जरूरत है। इसीलिए चेला बनावे के हमारे अब लड़का चाहते हैं सब गृहस्थी लोग, किस लिए चाहते हैं? बोले हमें मुखाग्नि कौन देगा, माने हमारी खोपड़ी कौन फोड़ेगा नारायण। मुखाग्नि का और क्या मतलब है, वो सेंस दूसरा है शास्त्र का। शास्त्र ने जिस वजह से संतान पुत्र की आवश्यकता बताई है, वो तो यज्ञ करने के लिए प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। तो सारी जिंदगी तो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, अब मरणासन्न हो गए तो वो यज्ञ नहीं कर सकते, तो उनकी जगह कौन यज्ञ करेगा? अब मर गए तो कौन यज्ञ करे? तो वो बेटे को अपना प्रतिनिधि बना देते हैं। इसीलिए वो फिर अंत में जब उसका शरीर चिता पर रखा जाता है तो वो अंतिम यज्ञ होता है मरने वाले का, और उसमें मरने वाला तो कर नहीं सकता है, तो उसका बेटा ऑन हिज बिहाफ करता है। इसीलिए वो सब सामग्री वही होती है जो यज्ञ में डाली जाती है। और पहले तो पंडित लोग मंत्र बोल करके संस्कार कराते थे, आजकल तो सब ऐसे ही जला जलू देते हैं। और ये अब ये बिजली का चल गया है, इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं है, डाल और राख भी शायद मिलती है कि नहीं मिलती है हमें मालूम नहीं है, मिलती। तो वो कर्मकांड की दृष्टि से पुत्र के होने की बात है, और वैसे देखो तो आजकल तो अखबारों में निकलता है उसकी पुत्री ने मुखाग्नि दे दी। अब पुत्री को छोड़ तो कोई जो वहां पर रहता है शमशान घाट पर वो भी मुखाग्नि दे सकता है, पुत्री में क्या रखा है? मुखाग्नि इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सवाल तो यह कि उसके पीछे यज्ञ की परंपरा को आगे कौन चलाएगा। तो चूंकि लड़कियां दूसरे घर में चली जाती हैं और अकेले यज्ञ करने का उनका अधिकार शास्त्र ने नहीं दिया है, पति के साथ ही वो यज्ञ कर सकती हैं, और पुत्र को स्वतंत्र यज्ञ करने का अधिकार है, कम से कम दैनिक हवन करने का तो अधिकार है ही। जो काम्य कर्म है उसमें तो गृहस्थ माने विवाहित होना चाहिए तभी कर सकता है। तो कर्मकांड की बात छोड़ दीजिए नारायण। तो महात्मा लोग इसलिए चेला बना लेते हैं कि भाई हमारा नाम चलता रहे। कितनी पीढ़ी याद करेंगे? कोई बहुत पुण्यात्मा होगा तो दो चार दस पीढ़ी याद करेंगे, बस फिर छुट्टी। अब मैं चैलेंज करता हूं यहां जितने आदमी बैठे हैं नारायण, तीन पीढ़ी से पहले अपने दादा परदादा का नाम बताओ। फोटो तो दिखा देंगे क्या ये, लेकिन किसी को नाम नहीं मालूम। और ज्यादातर लोगों ने तो अपने दादाओं को भी नहीं देखा होगा, तो सब ऐसे ही चलता है। तो मन जो है वो ये सूक्ष्म भूतों से बना हुआ है, और ये कहां आता है कि आत्मा, आत्मा के बाद प्रकृति, प्रकृति के बाद महतत्व, महतत्व के बाद अहंकार, अहंकार के बाद फिर पंच तन्मात्राएं, उससे बना ये सूक्ष्म, यही अंतःकरण मन। हम कहते हैं कि हम मन से परमात्मा को जान लेंगे, तो कितने पीढ़ी पीछे जाना पड़ेगा तब जाना पड़ेगा। तो मन पहले अपने अहंकार को ही जान ले, तो अपने कारण को यदि जानने की कोशिश करेगा तो लय हो जाएगा, फिर अहंकार रूप से मन रह जाएगा। अहंकार अपने कारण को जानने की कोशिश करेगा तो महतत्व के रूप से रह जाएगा, महतत्व अपने कारण को जानने की कोशिश करेगा तो प्रकृति के रूप में रह जाएगा, और प्रकृति यदि अपने कारण को जानने की कोशिश करेगी नारायण, तो खुद का तो लय हो ही जाएगा, वहां कोई ज्ञाता ज्ञेय का विभाग रहेगा नहीं, तो कौन किसको जानेगा। तो यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। इसी प्रकार से फिर आगे कहते हैं कि यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। आंख जिसको आंख नहीं देख सकती है, आंखों को जो देखता है, चक्षुंषि बहुवचन का प्रयोग किया है, और चक्षुषा न पश्यति ये एक वचन का प्रयोग है, तो कहते हैं कि जो आंख से नहीं दिखता है, आंखों को जो देखता है, ये बहुवचन का क्यों प्रयोग किया जा रहा है। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई कई प्रकार की आंखें होती हैं, एक तो ये भौतिक आंखें हैं हमारे आपके सबके लगी हुई हैं, एक मानस चक्षु है। अब जो संबंध जितने मालूम पड़ते हैं वो भौतिक आंख से मालूम पड़ते हैं या मानस चक्षु से मालूम पड़ते हैं। ये हमारा भाई है तो आंख से तो भाई नहीं दिखता है ना, आंख से तो व्यक्ति दिखता है। तो संबंध जितने भी हैं वो सब मानस चक्षु से दिखलाई पड़ते हैं, और बोले ये विद्वान है, ये संत है, ये महात्मा है, ये भी सब मानस चक्षु से दिखलाई पड़ते हैं, और भगवान राम के दर्शन हो गए, कृष्ण के दर्शन हो गए, या किसी देवी देवता के दर्शन हो गए, ये कौन सी आंख से दर्शन होते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, गीता में है ना, अर्जुन ने कहा कि महाराज अपना आप विराट रूप मुझे दिखला दीजिए, तो उन्होंने कहा इन आंखों से तो तू देख नहीं सकता है, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, उससे देख पाएगा। तो ये दिव्य चक्षु कौन सा है ना? तो उसमें टीवी में जो सीरियल आया था महाभारत का ना, तो ऐसे हाथ फेर दिए तो क्या ऐसे ही भगवान ने हाथ फेर दिया अर्जुन के मुंह पे और उसे दिखने लगा मेरा क्यों। तो दिव्य चक्षु में ये भौतिक चक्षु और मानस चक्षु, ये दोनों जाके लीन हो जाते हैं, वो साधन से डेवलप होता है। आप समाधि को कौन सी आंख से देखते हो? मन मैं इतने देर समाधि में रहा, बड़ा आनंद आया। या डिवाइन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनका भी लोग वर्णन करते हैं, ये देखा ये देखा ये देखा। महात्मा बुद्ध के तो बहुत वर्णन मिलते हैं, तो उस समय क्या होता है कि भौतिक आंखें जो हैं ये मानसिक आंखों में जाकर लीन हो गई, और मानसिक आंखें जो हैं वो जिस प्रकार का हम दर्शन करना चाहते हैं ना, जिस दिव्यता का, उस दिव्यता की भावना में जाकर के लीन हो जाते हैं, और फिर उस भावमय आंख से ही हम उस दिव्य साक्षात्कार करते हैं। तो अर्जुन को भी भगवान ने जब ये बात कही तो वो तो कृपा से हो गया, इसलिए वहां चाहे उन्होंने हाथ फिराया हो चाहे संकल्प से किया हो, लेकिन नारायण हमको आपको तो इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, तब दिव्य चक्षु प्राप्त होता है। ये अनुष्ठान करो, ऐसा एकांत में रहो, ऐसा ये करो, ऐसा ये करो, तो भगवान का दर्शन होगा। ये सब कंडीशन क्यों लगाते हैं? अरे दर्शन तो ऐसे ही हो जाना चाहिए। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम पहचानोगे नहीं उसे। और कभी कभी भगवान की तरफ से जो होते हैं ना, उसमें दिव्य चक्षु की जरूरत नहीं होती है। एक कथा सुनाते हैं, महाराज जी सुनाते हैं, तो जरा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए सुना देता हूं। एक कोई गांव के आदमी थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, उद्दंड टाइप के भी थे। तो गांव में जो पंडित जी थे विद्वान, उनसे कहते थे, महाराज हमको दीक्षा दे दो, हम भगवान के दर्शन करेंगे नारायण। अब वो टालते थे, कहीं बोले मूर्ख है, इसको क्या बता मैं। टालते गए, एक दिन वो पीछे ही पड़ गया। तो बोले अच्छा चल, इस मंत्र का जप कर, जप मंत्र तो ठीक बताया उन्होंने। तो बोले किसका ध्यान करेगा तू, क्या आप बताओ किसका करूं, कि तुझे जो सबसे ज्यादा प्रेम किसमें है ये बता, किसको तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो सोच के बोला कि वो तो मैं अपनी भैंस से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तुम्हारा श्री कहते हैं कि ये भैंस तो हमने बोल दिया, जहां ये कथा लिखी हुई है वहां महेशी शब्द है। तो महेशी तो पत्नी के लिए आता है नारायण, और महेशी माने भैंस भी होता है। तो हंसाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तो सबसे ज्यादा अपनी भैंस से प्यार करता हूं। बोले ठीक है, तो भैंस का ध्यान किया कर, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कुछ मंत्र बता दिया। वो तो भगवान विष्णु का है ही मंत्र, तो मंत्र तो वही करने लगा हो। अब वो चूंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो कम पढ़े लिखे लोगों की ये खूबी होती है कि वो जिस काम में लग जाए फिर उस पर लग ही जाते हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज्यादातर चूंकि चुनाचे मगर वगैरह इसी में पड़े रहते हैं। तो लग गया महाराज, अब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, तो चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। तो बोले आप कौन है? अरे बोले मैं वही हूं जिसका तू भजन करता है। बोले मैं तो आपका भजन नहीं करता, कि मैं विष्णु हूं जिसका मंत्र तू जप रहा है ना, वही हूं मैं। कि ना ना, गुरु जी ने तो कहा है कि वो तो भैंस है। अब वो भगवान ने कहा अच्छे से पाला पड़ा। तो बोले अच्छा चल भाई, तो वो भैंस के रूप में हो गए भगवान। बोले अब तो तुम निश्चित रूप से भगवान नहीं हो, अभी तक जो है चार हाथ के आदमी बने हुए थे, अब भैंस बन गए तो तुम कोई जादूगर हो, तो चलो मेरे गुरु जी के पास चलो, अगर वो कह देंगे कि तुम भगवान हो तो मैं मान लूंगा। अब भगवान ने कहा भाई अच्छे भगत के पाले पड़े, चल भाई गुरु जी के पास। तो वो जो भगवान भैंस बने हुए थे उसका कान पकड़ा भगवान का, कान पकड़ के खींचते हुए ले गया उसे, गुरु जी गुरु जी, अरे ये कौन आ रहा भैया, भैंस आ रही है इसके, उन्हें तो भैंस नहीं दिख रही थी गुरु जी को, तो वो भगत ही दिख रहा था। क्या बात है भाई, कि देखो ये कोई बहुरूपिया है और कहता है कि मैं भगवान हूं। बोले भगवान हूं कि हाँ, पहले चार हाथ का होके आया और जब मैंने कहा कि मैं तो भैंस को भगवान मानता हूं तो अब ये भैंस हो गया। गुरु जी तो समझ गए नारायण के भगवान ही है, तो उन्होंने कहा भैया मेरे सामने जरा दिखाए दिखलवा। गुरु जी ने कहा अच्छा मौका है, अब शिष्य से ही जो है गुरुत्व हासिल कर लो। बोले कि जरा इनसे कहो कि मेरे सामने जो है वो चार हाथ का होकर दिखा, मैं तो मैं सर्टिफाई करूं कि ये भगवान है। तो वो भैंस बोलने लगी कि गुरु जी के तो अभी इतने पुण्य नहीं है कि मैं उनके सामने प्रकट हूं, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो चलो भाई मुझे तो माननी पड़ेगी बात। तो प्रकट हुए तो गुरुजी तो विह्वल हो गए और गुरु शिष्य दोनों का कल्याण हो गया। तो बात इसमें यह समझानी है कि वो जो भगवान विष्णु का रूप जो दिखलाई पड़ा वो शिष्य को तो दिखलाई पड़ रहा था लेकिन गुरुजी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। भौतिक आंखें तो दोनों की एक सी थी और जानकारी गुरुजी की ज्यादा थी, लेकिन चूंकि समझ उन्होंने साधना नहीं की थी इसलिए वो दिव्य चक्षु उनको प्राप्त नहीं हुए जिनसे उस रूप का साक्षात्कार होकर के ये बुद्धि बनती कि ये भगवान है। तो नारायण चाहे भौतिक चक्षु हो, चाहे मानस चक्षु हो, चाहे दिव्य चक्षु हो, इन सबके प्रकाशक तो आत्मा ही होता है। तो बताना तो ये चाहते हैं कि आत्मा इनके द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, आत्मा के द्वारा ये सब जाने जाते हैं। एक और बढ़िया बात महाराज जी ने कही है, वो कहते हैं ये जो बुद्धिवाद है ना, ये भी एक चक्षु ही है। कोई अद्वैत की आग्रह लिए बैठा है, कोई द्वैत का आग्रह लिए बैठा है, नारायण कितने कितने मतवाद हैं, गिनती है? मोटे मोटे रूप से तो गिनती कर लोगे आप, छह और छह बारह दर्शन तो अपने भारतीय दर्शन ही है, और फिर इनके अवांतर भेद हैं और वेस्टर्न फिलॉसफी के फिर अनेक भेद हैं, ये सब बुद्धिवाद ही तो है और क्या है नारायण। तो बुद्धिवाद जितने भी हैं ये सब चक्षु ही हैं, इनसे हम अल्टीमेट रियलिटी को जान शेष करते हैं, लेकिन बुद्धि से जो जाना जाएगा वो अल्टीमेट नहीं हो सकता है। जो समस्त बुद्धियों का प्रकाशक है वही अल्टीमेट है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। इसी प्रकार से फिर कहते हैं यत् श्रोत्रेण न शृणोति, कान से जो नहीं सुना जा सकता, यत् श्रोत्रेण न शृणोति, ये न श्रोत्रमिदं श्रुतम्, जिससे कान को सुना जाता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। इसी तरह से अर्थ लगा लेना चाहिए। तो इसमें जो खास बात है वो ये है कि जैसे कान है तो कान काहे से बना हुआ है, आकाश तन्मात्रा से बना हुआ है, इसका देवता कौन है, दिग देवता है, कान का दिग देवता है, आकाश तन्मात्रा से बना हुआ है, इसका गुण क्या है, शब्द है, इसका प्रकाशक कौन है, तो बोले आभास है, जो इसे अपना मानता है। आभास का प्रकाशक कौन है, बोले साक्षी है। साक्षी का प्रकाशक कौन है, बोले स्वयं प्रकाश है। दृगेव न तो दृश्यते, वो साक्षी जो है वो तो केवल दृंग मात्र है, वो दृष्टा नहीं होता है, वो दृंग मात्र है। दृष्टा होगा तो दृश्य की अपेक्षा से उसका नाम दृष्टा होता है, नहीं तो दृंग मात्र ही होता है, दृष्टि मात्र होता है। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। इसी प्रकार से प्राण के बारे में कहते हैं, ये क्रिया शक्ति भी आत्मा नहीं है, इससे भी आत्मा नहीं जान सकते। अब आजकल नारायण यही सबसे बड़ी घाटी है, चैतन्य की परिभाषा ही लोगों ने बदल दी है। चैतन्य किसे कहते हैं, जो क्रिया करे उसको तो चैतन्य, एनिमेट इनएनिमेट, अनुवादक तो ऐसे ही है ना सब, जिसमें क्रिया हो वो चैतन्य है, जिसमें क्रिया ना हो वो जड़। और सांख्य क्या कहता है, जिसमें क्रिया हो वो जड़ और जिसमें क्रिया ना हो वो चैतन्य। तो बिल्कुल उलट बांसी हो गई है, इसीलिए अपने दर्शन की बात समझ में आनी जो है थोड़ी दिक्कत तलब हो गई, तो मेहनत करनी पड़ती है नारायण। अब कल इसका समाप्ति का दिन है, तो अभी एक चैप्टर इसका शेष रह रहा है, तो उसे कल पूरा कर देंगे। वैसे ये केन उपनिषद जो है तो बहुत छोटी उपनिषद, लेकिन है बहुत गंभीर, और इसमें जो भाष्य शंकराचार्य जी ने लिखा है वो डबल भाष्य है, पदभाष्य और वाक्य भाष्य, दो दो बार भाष्य लिखा है। तो इसकी इम्पोर्टेंस उनके दिमाग में होगी, तभी ना दो दो बार लिखा है। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, जो मोस्टली रिपीटेशन ही है दोनों भाष्यों में, लेकिन फिर भी कहीं कहीं फर्क है, तो भाष्य से इसको पढ़ना चाहिए। एक बर्ड्स आई व्यू मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, और कल जो शेष हिस्सा है वो और प्रस्तुत कर देंगे। हरि ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम नारायण नारायण।